Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जब अनित्य वस्तु से आप छुटकारा चाहते हैं और ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष का उपाय एकमात्र है आत्मज्ञान। तो आत्मजिज्ञासा, मोक्ष के साधनभूत आत्मा को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है। और ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के जब प्रस्थान त्रय का आप विचार करोगे अधिकारी बनकर के, उससे तो जो ब्रह्म विचार का, उपनिषद विचार का फल है, उपनिषद विचार का फल है ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव, ये दृष्ट फल है। और जिस दिन आपको ये होगा उसी दिन फिर तरति शोकम, आत्मविद के अनुसार आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता। और जब तक अधिकारी होकर के उपनिषदों का विचार नहीं करते, तब तक क्या ये वेदांत श्रवण, रोज का सत्संग आपका व्यर्थ जाएगा? यद्यपि व्यर्थ तो नहीं जाएगा, कुछ न कुछ जरूर, जितना आप समझोगे सत्संग के माध्यम से, वेदांत का सत्संग करते हैं तो वेदांत के सत्संग में तो परमात्मा का ही वर्णन होता है, और शब्द के माध्यम से जब समझ करके सुनते जाते हैं तो शब्द के माध्यम से उस परमात्मा के आकार की, शब्द के अर्थभूत, उपनिषदों के अर्थभूत परमात्मा के आकार की आपके अंतकरण में यहां बैठे बैठे क्यों न हो थोड़ी वृत्ति बन जाती है। और वह वृत्ति, एक अंतकरण के वृत्ति का नियम होता है कि जिस आकार की वृत्ति बनती है, जिस विषय की वृत्ति बनती है, उस विषय का आपके अंतकरण में संस्कार डाल करके मिट जाती है। भले ही अनाधिकारी के बुद्धि में, अविरक्त चित्त मनुष्य के बुद्धि में वेदांत का सत्संग सुनने के बाद भी वेदांत का अर्थ ज्ञान टीके न, टिकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा संस्कार तो जरूर पड़ेगा। और वह संस्कार आपको पुनः पुनः उसी अर्थ का चिंतन करने के लिए प्रेरित करता जाएगा। लेकिन इतना ही मात्र, केवल संस्कार पढ़ना मात्र फल नहीं है वेदांत चिंतन का, वेदांत विचार का। वेदांत विचार का तो फल है कि आपका तत्काल सारा दुख दूर हो, जो शोक हो रहा है, शोकाकुल करने वाली परिस्थिति आपके सामने आ रही है, उस परिस्थिति में भी आप शांत रहें। किसी प्रकार का दुख शरीर आदि में आने वाला है, उस दुख से प्रभावित न हो। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य के अनुसार, शरीर आदि दुखों से, शरीर आदि के दुखों से अप्रभावित आपके बुद्धि को रखना, यह वेदांत का उद्देश्य है। और वो तभी हो सकता है जब वेदांत का अर्थ बुद्धि में धारण करें हम। और उसका उपाय तो यह है कि पहले हमारे अंतकरण में अधिकारी के प्रयोजक, नित्यानित्य वस्तु, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये आ जाए, मुमुक्षा आ जाए, तत्व जिज्ञासा हो जाए। और तत्व जिज्ञासु बन करके हम यदि उपनिषद के अर्थ का चिंतन करते हैं तो निश्चित ही उपनिषद के प्रतिपाद्य, ये कोई दूसरे की कथा नहीं है, रामायण भागवत आदि में तो आपको दूसरे की कथा सुनने को मिलती है। यद्यपि वहां भी स्थान स्थान पर उन ग्रंथों का भी मुख्य उद्देश्य है कि वेदांत का जो अर्थ है उसका आत्मरूप से ज्ञान कराना। सियाराम में सब जग जानी, ये उनकी चौपाई सर्वम खलुदम ब्रह्म की तो एक प्रकार से अनुवाद है, लेकिन अधिकतर दूसरी दूसरी कथाएं आपको मिलती है और उसमें मूल तत्व भूल जाते हैं। लेकिन वेदांत में तो आपका अपना स्वरूप ये प्रतिपाद्य विषय है। और उसके लिए यहां केनोपनिषद में ऐसी कल्पना श्रुति भगवती ने की है कि एक सच्चा उत्तम अधिकारी, आत्मजिज्ञासु बन करके एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास गया है। जब आपके अंदर अंतकरण में सच्ची जिज्ञासा होती है, जिस विषय की जिज्ञासा होती है, तो उस विषय के ज्ञाता के पास पहुंचेंगे तो उसी विषय विषयक प्रश्न होगा। तो केनोपनिषद के प्रथम मंत्र में एक प्रकार से आत्मजिज्ञासु का प्रश्न है आत्म विषयक। तो पहला मंत्र उसमें ऐसा आता है कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। इससे वो ये पूछ रहा है, बड़ा विचारशील तत्व जिज्ञासु है, उसे ये निर्धारण है कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनमें जो प्रवृत्ति होती है वह चेतन के बिना नहीं होती है। चेतन की प्रेरणा से ही जड़ पदार्थ कोई भी कार्य करते हैं। जड़ पदार्थ में स्वतः कोई कार्य नहीं होता जब तक कार्य करने की प्रेरणा चेतन उन्हें नहीं देता, और चेतन की प्रेरणा पाकर के जड़ पदार्थ में बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रवृत्ति होती है। लोक में देखा जाता है कितनी भी स्पीड से चलने वाली आपकी गाड़ी हो, लेकिन गैरेज में खड़ी है और ड्राइवर रूपी चेतन प्रेरक उसे चाबी लगा करके चलने के लिए प्रेरित नहीं करता, तब तक वह जहां की वहीं स्थिर रहती है, चलती नहीं है, और चेतन की प्रेरणा पाकर के खूब दौड़ती है। तो गाड़ी आदि अचेतन पदार्थ चेतन की प्रेरणा से प्रेरित हो रहे हैं ऐसा निर्धारण कर लिया, और इसी दृष्टांत को सामने रख करके फिर आत्मजिज्ञासु बाहर जो जड़ पदार्थ है उतने का मात्र विचार करता है, ऐसा नहीं। तो यहां जो प्रश्न लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास पहुंचा है तत्व जिज्ञासु, उसने ये विचार कर लिया है कि जैसे बाहरी गाड़ी जड़ है, ऐसे ये भी तो एक गाड़ी के तरह गाड़ी है, शरीर भी, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर इंजन के तरह इंजन है, जैसे गाड़ी के बॉडी में इंजन भी होता अंदर, ऐसे ये शरीर गाड़ी के तरह गाड़ी है और इसके अंदर इंजन है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है गाड़ी, और ये दोनों भी जड़ है, इंजन भी और बॉडी भी, और इसे चलाने वाला कोई न कोई चेतन होगा, इसकी प्रेरणा से ही शरीर इंद्रिया मन बुद्धि चल रहे हैं, क्योंकि ये भी भौतिक है, शरीर भी पांचों भूतों से बना हुआ है, जब तक इसके अंदर कोई न कोई चेतन बैठा रहता है तभी तक इसमें क्रियाएं होती हैं, और जिस दिन वो चेतन निकल जाता है तो फिर शरीर एक पत्थर के तरह लकड़ी के तरह पड़ा रहता है, उसमें कोई क्रियाएं नहीं होती। तो शरीर भी जड़ है, इंद्रिया भी वेदांत सिद्धांत के अनुसार अपंचकृत पंचभूतों का ही कार्य है, भूत जब जड़ है तो उनका परिणाम जो इंद्रिया है वे भी जड़ है, जैसे जड़ मिट्टी का कार्य घड़ा भी जड़ है, ऐसे जड़ भूतों का बना हुआ ये शरीर भी जड़ है, तो इंद्रियों में बाह्य ज्ञानेन्द्रिया भी भूतों का ही कार्य है, अपंचकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से वेदांत सिद्धांत के अनुसार आपकी चक्षुरादि इंद्रिया बनी है, रजोगुण से बनी है कर्म इंद्रिया, और सम्मिलित सत्वगुण से बना है अंतकरण, सम्मिलित रजोगुण से बना है आपका प्राण, तो ये भूतों से ही प्राण भी बना है, भूतों से ही मन भी बना है, भूतों से ही इंद्रिया भी बनी है, तो ये भी अपने कारणभूत भूतों के तरह ही जड़ है, शरीर के तरह ये भी जड़ है, लेकिन इनमें भी क्रिया होती हुई देखी जा रही है। अब इसे ये यहां जो प्रश्न है तत्व जिज्ञासु का, इस विषय प्रश्न है कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि गाड़ी के तरह ही जड़ है, तो निश्चित ही इनका प्रेरक भी कोई न कोई चेतन है, उसी की प्रेरणा से ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में प्रेरणाएं उसकी प्रेरणा पाकर के प्रवृत्तियां हो रही हैं। तो शरीर को इंद्रिय को मन को बुद्धि को अपना अपना कार्य करने की जो प्रेरणा दे रहा है वह एक चेतन है, वह चेतन इनसे अलग है। वह चेतन कौन है, उसका क्या स्वरूप है, ये किसकी प्रेरणा से, किस चेतन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के मन अपने विषय का चिंतन करता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इससे पूछा जा रहा है कि ये जो जड़ मन है उसमें जो चिंतन हो रहा है उसके चिंतनीय, सबका अपना अपना चिंतनीय विषय अलग अलग है, लेकिन सबका मन अपने अपने चिंतनीय विषय के चिंतन में प्रवृत्त हो रहा है, चिंतन रूपी क्रिया कर रहा है। तो ये तो जड़ है, इस जड़ मन में चिंतन रूपी कार्य करने की प्रेरणा जिस चेतन से मिल रही है वह चेतन कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। यह केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रथम वाक्य से प्रश्न है, क्योंकि लोक में जो प्रेरक होता है उसे इतना तो मालूम है कि चेतन प्रेरक होता है, लेकिन बाह्य जड़ पदार्थों का प्रेरक जो चेतन है वह तो एक प्रकार से कार्यक्रम संघात से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से विशिष्ट है। ड्राइवर हो, गाड़ी चलाने वाला कोई भी हो, चलाने वाला जड़ को प्रेरणा देने वाला चेतन, बाह्य चेतन या तो बोल करके प्रेरणा देता है, यदि नौकर को स्वामी प्रेरणा दे रहा है तो ये कार्य करो, तो वाणी रूप बोलना रूप वदन रूप क्रिया हुई उसकी प्रेरणा, और उस प्रेरणा को सुन करके अपना नौकर कार्य करने में प्रवृत्त होता है। और जड़ पदार्थ कोई ऐसे हैं तो चाबी आदि लगा करके उसको स्विच ऑन ऑफ करके प्रेरणा दी जाती है, उससे वो क्रिया रूप प्रेरणा हो गई। तो लौकिक चेतन में तो कोई न कोई इच्छा या इशारा या क्रिया रूप प्रेरणा है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जड़ पदार्थ है मन, आध्यात्मिक जड़ पदार्थ है प्राण, आध्यात्मिक जड़ पदार्थ है श्रोत्र वाणी इंद्रिया और चक्षु आदि, ये सभी के सभी, इनको प्रेरणा देने वाला जो प्रेरक है उसका स्वरूप, उसकी प्रेरणा का स्वरूप क्या है, किस प्रकार की प्रेरणा है उसकी, क्योंकि बिना चेतन से तो ये प्रेरित हो नहीं सकते, और यदि चेतन ही प्रेरणा दे रहा है तो उसकी प्रेरणा का वो सविशेष है कि निर्विशेष है, इसका निर्धारण यहां के तत्व जिज्ञासु को नहीं है। इसलिए वो प्रश्न करता है कि आप ये बताइए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास आकर के कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाच मिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति। इससे ये प्रश्न किया कि मन का प्रेरक जो है उसका क्या स्वरूप है, जिसकी सन्निधि मात्र से वो प्रेरित हो रहा है मन, वह किस प्रकार की प्रेरणा मन को दे रहा है, और केन प्राण प्रथम प्रयति युक्त। इससे ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्राण है उसका जो स्पंदन रूप कार्य है, प्रवृत्ति है, उस स्पंदन रूप क्रिया करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है जड़ होने से, जिस चेतन की प्रेरणा से वह स्पंदन कर रहा है उस चेतन का क्या स्वरूप है, और केनेशितां वाच मिमां वदन्ति। इससे पूछा गया कि ये जो मनुष्य है बोलना रूप व्यापार कर रहे हैं वाणी से, वाग इंद्रिय से, तो बोलना रूप व्यापार हो रहा है उस व्यापार को करने के लिए वाणी को प्रेरणा जो चेतन दे रहा है उसका क्या स्वरूप है, और चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति। इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा देव यानी चेतन प्रकाशवान पदार्थ है जो चक्षु को रूप ग्रहण के लिए प्रवृत्त कर रहा है, और श्रोत्र को शब्द ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है, ऐसा चेतन कौन है। इस प्रकार ये जो प्रथम मंत्र है एक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के प्रेरक के स्वरूप विषयक प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा आत्मा का, वो आत्मा है प्रेरक, और उस आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है तो ये बताते हैं कि वह जैसे लोक में एक नौकर को मालिक प्रेरणा देता है बोल करके, बोलना रूप व्यापार उसकी प्रेरणा है, या इशारा करना आदि प्रेरणाएं होती हैं, उस प्रकार की प्रेरणा श्रोत्रादि का प्रेरक इनको नहीं करता है क्योंकि वो निर्विशेष है। लेकिन उसकी प्रेरणा इतनी है कि उसकी सन्निधि मात्र से। दूसरे मंत्र में इसी का उत्तर दिया जा रहा है इस प्रश्न का कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। इससे कहा जा रहा है कि इसमें दो श्रोत्र शब्द हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, तो एक श्रोत्र शब्द का तो अर्थ है इंद्रिय आपकी जिससे शब्द का ज्ञान होता है। शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्र इंद्रिय स्वतः जड़ है और वह शब्द का ग्रहण कर रही है, तो जो अचेतन है उसे शब्द का ज्ञान हो नहीं सकता जड़ को। लेकिन तब भी व्यवहार में यह होता है कि शब्द को श्रोत्र इंद्रिय ने ग्रहण कर लिया, शब्द का ज्ञान श्रोत्र इंद्रिय से हुआ, वो श्रोत्र इंद्रिय श्रोता है, सुनने वाला है। सुना किसने तो कहते कान ने, बोला किसने तो कहते वाणी ने, देखा किसने आंख ने, तो देखने वाली आंख है, बोलने वाली वाणी है, सुनने वाला कान है, इनमें जो श्रोत्र में श्रोतृत्व है, तो जैसे स्वतः तो इनमें हो नहीं सकता इसलिए कहते हैं वाणी में स्वतः दाहकत्व नहीं है, जलाने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उबला हुआ पानी यदि आपके शरीर पर पड़े तो वह आपके त्वचा को जला करके बड़े बड़े फोड़े शरीर में हो सकते हैं। तो यदि पूछे कि ये जो फोड़ा हुआ त्वचा में ये किससे हुआ तो कहते पानी ने जलाया, तो यद्यपि जलाने की शक्ति पानी में तो नहीं है, पानी जला नहीं सकता, लेकिन जलाने की सामर्थ्य जिस अग्नि में है उस अग्नि के साथ पानी का जब तादात्म्य हो जाए, संसर्ग हो जाए, संबंध बन जाए, तो पानी भी जला देता है। ऐसे शब्द को प्रकाशित करने की शक्ति जड़ जो श्रोत्र इंद्रिय है इसमें नहीं है, रूप को प्रकाशित करने की शक्ति जड़ चक्षु इंद्रिय में नहीं है, लेकिन सब को प्रकाशित करने वाला और स्वयं भाषित होने वाला तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति के अनुसार स्वयं प्रकाश जो आत्मा है वो चेतन है, चेतन में ही ज्ञान की शक्ति होती है, प्रकाश की शक्ति होती है, प्रकाशित कर सकता है चेतन ही, और चेतन आत्मा की सन्निधि में ये श्रोत्र इंद्रिय शब्द को प्रकाशित करता है। तो ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इससे बताया जा रहा है कि ये जो श्रोत्र इंद्रिय है ये जड़ होता हुआ भी इसमें शब्द ग्रहण करने की जो शक्ति है, जैसे अनुष्ण होता हुआ भी पानी में जो जलाने की शक्ति आई वह जलाने वाले अग्नि के संबंध से आई, अग्नि के सन्निधि से आई, ऐसे ही शब्द ग्रहण करने की शक्ति, शब्द का ज्ञान कराने की शक्ति स्वतः जड़ होने के कारण श्रोत्र इंद्रिय में नहीं है, लेकिन जिसकी सन्निधि में शब्द को ग्रहण करती है श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय में शब्द प्रकाशन का भी सामर्थ्य जो प्रदान कर रहा है वह श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इस वाक्यस्थ श्रोत्रम शब्द से कहा जा रहा है। जैसे जलाने वाले पानी का भी उसमें वो सामर्थ्य प्रदान करने वाला अग्नि होने से उसे दग्धु जलस्य दग्धा ऐसा कहा जाता है, जलाने वाले जल का भी जलाने वाला है अग्नि का मतलब जलाने की शक्ति प्रदान करने वाला अग्नि है। ऐसे शब्द को प्रकाशित करने की शक्ति श्रोत्र इंद्रिय में जिससे उपलब्ध हो रही है, जिसकी सन्निधि मात्र से उपलब्धि हो रही है, वह श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक है आत्मा चेतन। और पूछा तो यह है कि उसका स्वरूप क्या है, वो सविशेष है कि निर्विशेष है। तो ये कहा गया कि वह श्रोत्र को शब्द को प्रकाशित करने की शक्ति जिसके सन्निधि मात्र से उपलब्ध हो रही है वह श्रोत्र से श्रोत्रम इस शब्द से बताया जा रहा है कि निर्विशेष है। वह श्रोत्र इंद्रिय को बोल करके ये नहीं कहता कि तुम शब्द को प्रकाशित करो और या कोई क्रिया नहीं करके बताता, अपितु वह बोलना या क्रिया करना आदि जो विशेषता है इन सब विशेषताओं से रहित होकर के केवल अपनी सन्निधि मात्र से श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। किस प्रकार, तो भाष्य में भाष्यकार भगवान एक उदाहरण बताता है। एक पहले आजकल तो मशीनों से ही भोजन में विष मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, कुछ दोष तो है कि नहीं ज्ञात होता है, लेकिन जब पहले इन मशीन आदियों का आविष्कार नहीं था और जो बड़े बड़े लोग होते रहे राजा आदि, उनको शत्रु भी होते हैं, हो सकता है पाचक के साथ मिल करके कहीं विष आदि खिला करके मार दे, तो उस दृष्टि से वो भोजन की परीक्षा करने के लिए निर्दोष भोजन है या विष आदि से युक्त है इसकी परीक्षा करने के लिए रखा जाता था एक पक्षी उनके यहां, हंस रखा जाता था करते। तो वो उस पक्षी में, पक्षी की आंख में ये शक्ति है, कुदरती ही प्राकृतिक शक्ति है कि जब कोई विष आदि सामने आता है तो आंख में विकार हो जाता है, लाल पड़ जाती आंख है विष की सन्निधि मात्र से ही। तो जब भोजन की थाली परोस करके राजा के सामने आती तो एक व्यक्ति ला करके उस पक्षी को राजा के पास रखता, तो राजा की दृष्टि थाली में नहीं रहती है, उस पक्षी के आंख पर दृष्टि होती है और निश्चित समय तक वो देखता रहता है आंख के तरफ ही। यदि आंख में किसी प्रकार का विकार उस पक्षी के न आ जाए, लाल आदि न हो, निर्विकार आंख रहे, तो राजा समझ जाता है कि ये भोजन शुद्ध है, उसमें कोई विष आदि मिला हुआ नहीं है, इसे ले सकता है। तो राजा की, जब वो पक्षी के आंख निर्विकार रहती है तो राजा की भोजन में प्रवृत्ति होती है, और उसमें थोड़ा भी कोई विकार उत्पन्न हो जा, आंखें बदल जा, तो फिर राजा भोजन वो करता नहीं, हटा देता थाली। इसका अर्थ यह है कि वहां दृष्टांत इतने अंश में है कि उस पक्षी की निर्विकार आंखों से भी राजा को भोजन में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिली, बिना आंख में कोई भी क्रिया नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई अलग से प्रेरणा नहीं दी, तो वो जो पक्षी के आंख जैसे निर्विकार रह करके राजा के भोजन में प्रवृत्ति के प्रवर्तक बन गए, उनमें कोई विकार उत्पन्न न होना ही केवल अपने स्वरूप में जैसा का तथा स्थित रहना ही राजा को प्रेरणा देना है। ऐसे ही श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण करने की जब प्रेरणा आत्मा देती है, चेतनात्मा, तो उस समय प्रेरणा देने के लिए कोई अलग से विकार उत्पन्न नहीं होता उसमें, या तो बोल करके कि लौकिक जो प्रेरक होता है वह तो बोल करके या किसी प्रकार की क्रिया इशारा आदि करके प्रेरणा देता है, ऐसी उसकी प्रेरणा नहीं है, स्वरूप ही केवल सन्निधि ही प्रेरणा है। ये यहां पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि मंत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वह श्रोत्र इंद्रिय को अपनी सन्निधि मात्र से ही शब्द ग्रहण करने की शक्ति जिसके सन्निधि में आ रही है वो है आत्मा, वह श्रोत्र का भी प्रेरक है। तो मनसो मनोयत, तो इसमें मन है, अंतःकरण जो चिंतन करता है चिंतनीय विषय का, लेकिन उसमें भी चिंतन रूप व्यापार जड़ होने के कारण जो हो रहा है वह जिसकी सन्निधि मात्र से हो रहा है वह केवल सन्निकट रह करके और वो व्यापक होने के कारण सभी जड़ पदार्थों के सन्निकट वो है ही है और उसकी निकटता मात्र से ही स्वरूप से ही प्रेरणा उसकी हो रही है, वह निर्विकार है। मनसो मनोयत इससे ये बताया जाता है। और प्राण को भी प्राणन रूप व्यापार स्पंदन रूप व्यापार करने की शक्ति उसी चेतन से मिल रही है, इसलिए उसे प्राण का भी प्राण कहा जाता है। सव प्राणस्य प्राण, वही निर्विकार चेतन प्राण का भी प्राण है और उसी से प्रेरणा पाकर के वाक इंद्रिय शब्द का उच्चारण रूपी अपना वदन रूप व्यापार भी करती है। ये सब उत्तर इस प्रकार से दिया जा रहा है कि वो जो श्रोत्रादि का प्रेरक है वह निर्विकार है और उसे सीधे शब्द से नहीं बताया जाता, उसमें कोई विशेषता न होने के कारण कि वह इस प्रकार का है, लक्षित कराया जा रहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हो वाचम सव प्राणस्य प्राण इत्यादि से, कि वह श्रोत्रादि का प्रेरक निर्विकार चेतन है और निर्विकार स्वरूप में स्थित रह करके भी श्रोत्रादि को उसकी सन्निधि मात्र से ही अपना अपना कार्य करने की शक्ति उससे उपलब्ध हो रही है। वह उसी को मात्र जब साधक श्रोत्र, अभी तो अज्ञान अवस्था में क्या हो जाता है कि हमारी जो अहम वृत्ति उत्पन्न हो रही है वह जो श्रोत्रादि का प्रेरक है, जिस निर्विकार भाव में रह करके श्रोत्रादि को अपने अपने शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त कर रहा है, वह चेतन निर्विकार चेतन हमारी अहम वृत्ति का विषय नहीं बन रहा है। वास्तविक आत्मा तो वो है, हमारा वास्तविक स्वरूप है वह, और अज्ञान अवस्था में हम समझ रहे हैं अपने आप को उस प्रेरक चेतन की प्रेरणा से प्रेरित होने वाले जो शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, उसको हमारी अहंता अपना विषय बना रही है। हम वस्तुतः है, इस मंत्र से ये बताया जा रहा है कि हम वस्तुतः शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो चेतन आत्मा की प्रेरणा से प्रवृत्त होने वाले उसके प्रेर्य है, वह हम नहीं है, लेकिन हम इसके प्रेरक हैं और इनके प्रेरक श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन का जिस दिन हमें अपने आत्मा के रूप में बोध होगा उसी दिन हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी और किसी भी परिस्थिति में हमें, क्योंकि वह असंग है और उसमें हमारी अहंता जब स्थिर हो जाएगी तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आने वाले कष्ट से हमारी बुद्धि प्रभावित नहीं होगी। वो है मुक्ति का उपाय, उस चेतन आत्मा को जानना। और भी कई प्रकार से यहाँ पर उस आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन होगा, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।